धौला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं, अन्ताय मच्छहीनं, दशदशयचावधीरं, पडमजिनं वोक्षम्णमिऊणन्तरम्, अनन्तरुत्तुङ्गसन्नमयदुग्गेजम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जीवस्थान नामक है और अपना विषय अंतरानुगम। इसको पढ़ते हुए भी हम पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 95 पर आ गए। 95 मार्गणाओं में, ये वेद मार्गणा की बात चल रही थी। त्रिवेदी जीवों में हमने मिथ्यात्व का अंतर देखा है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा कुछ कम 55 पल्ले हमने देख लिया था। कल जो बात आई थी ना, फिर सम्यक्त्व में ले गए। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि उसको पुरुष वेद में लाना है, क्योंकि मिथ्यात्व में शुरुआत में तो पुरुष वेद बांधेगा, बाद में स्त्री वेद बांधेगा, क्योंकि मरण के पूर्व में अंतर्मूर्त, तो अगर स्त्री वेद में उत्पन्न होना होता तो स्त्री वेद बांधने के लिए और टाइम चला जाता, ये हो सकता है कारण। परंतु मिथ्यात्व से सम्यक तो पाने का काल छोटा है, मैंने ये पॉसिबिलिटी मुझे लगी, क्योंकि इसके एक अंतर्मूर्त बढ़ाया है। नारकियों में, देवों में ऐसा नहीं लिया था उन्होंने। यहाँ बताया ना, जानकर कहना चाहिए, कुछ तो कारण होगा तभी तो यहाँ बताया। और वहां जाने वाले भी पुरुष वेदी नपुंसक वेदी लिए है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए हम भी नहीं कुछ कर सकते। परंतु एक विकल्प आया था, क्योंकि 28 प्रकृति उनके वाला भी पुरुष वेदी या नपुंसक वेदी स्त्री वेद में उत्पन्न कराया था उन्होंने। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी 181 सूत्र से पढ़ेंगे। 181 सूत्र, शासन सम्मादिट्ठि। सम्मादित मिच्छादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च ओघम। स्त्रीवेदी दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा ओघ के समान अंतर है। यानी वो सासाधन के लिए नाना जीवों की अपेक्षा एक समय से लेकर पल्ले का असंख्यात अभाव, समय मिथ्यात्व के लिए अंतर्मूर्त से लेकर पल्ले का असंख्या, उसके भी एक समय से लेकर पल्ले का असंख्यात अभाव नाना जीवों की अपेक्षा। साल में तीन बार, अब एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे यहाँ पर, तो जघन्य अंतर तो वो भी ओघ के समान होगा। जघन्य अंतर कितना होगा सासाधन के लिए, पल्ले का असंख्यात होगा, और समय मिथ्यात्व के लिए एक अंतर मोट, मिथ्यात्व में गया वापस आया। उत्कृष्ट अंतर के लिए स्त्री वेद में कायम रखना है उसको, तो जो स्त्री वेद का लंबा काल होगा, उसके शुरुआत में एक भव में और लास्ट ये भव में, इस तरह से उसका अंतर घटित करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो कहते नाना जीवन की अपेक्षा ओघ के समान अंतर है, यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन पलिदोवमस असंख्य जदि भागो अंतो मोहत्तम। स्त्रीवेदी सासादन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम का असंख्यात भाग और अंतर्मूर्त है। आगे बढ़ते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन पलिदवम सदपुदत्तम स्त्रीवेदी सासादन सम्य दृष्टि और सम्य मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्योपम शतपृथक्त्व है। अभी उसको बताएंगे कैसे होता है, यानी स्त्रीवेदी में सासादन के साथ जन्म लेगा वो पुरुष वेद में से, तो स्त्रीवेदी हुआ सासादन में आया, एक समय के बाद अंतर चालू हो गया। ख्याल में आई बात?
सम्यक दर्शन हुआ
प्रथम ऑप्शन सम्यक में से कोई पुरुष वेदी या नपुसक वेदी सासादन में आया, एक समय बाकी था तभी जाके स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ। देखो स्त्री वेदी सासादन समय दृष्टि समय मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्योपम शतपृथक्त्व है। उसको बता रहे जैसे अन्य वेद की स्थिति को प्राप्त, यानी अन्य वेद में से आया है हाँ। कोई एक जीव उस स्थिति को प्राप्त यानी वहां लंबा काल बिता के आया है, तो यहां भी लंबा काल हो जाएगा उसका। सासादन गुणस्थान के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर स्त्री वेदियों में उत्पन्न हुआ और एक समय सासादन गुणस्थान के साथ दिखाई दिया, द्वितीय समय में मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ। स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण, स्त्रीवेद की स्थिति कितनी है? पल्योपम शतपृथक्त्व, पृथक्त्व सौ पल्य, पुरुषवेद की पृथक्त्व सौ सागर। यहाँ लगातार स्त्री 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 पर्याय में रहने का काल। स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंत में स्त्रीवेद की स्थिति में एक समय अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को गया, यानी वो अंतिम भव में अंतम अंतर्मूर्त में प्रथम उपशम प्राप्त किया और सासादन में गया। स्त्रीवेद में लगातार स्त्रीवेद में रहा, फिर सासादन में मरकर अन्य वेद में चला गया, पुरुष वेदी हुआ कहेंगे हम। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पुनः मरा और अन्य वेद को प्राप्त हो गया। अन्य वेद यानी पुरुष वेद ही हम संभव कर लेंगे क्योंकि एक ही समय में मरा है, तो जाने के पहले उसी वेद का बंध भी तो होता है। इस प्रकार दो समयों से कम पल्योपम शतपृथक्त्व काल स्त्रीवेदी सासादन समय से जीव का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हुआ। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि स्त्रीवेदी जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई अन्य वेदी जीव देवियों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में, चाहिए अंतर में नहीं, अंत में र निकालो, अंत में नीचे से चौथी लाइन, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हो या अंतर घटित किया, सम्यक मिथ्यात्व में मरेगा नहीं बाद में, पीछे जिस गुणस्थान से आयु को बांधा था क्योंकि बीच में उसको समय को प्राप्त कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, तो जिस समय को में आयु बंद होगा तो समय को में एक अंतर्मूर्त बिता कर फिर मरेगा, मिथ्यात्व में आयु बंद किया तो मिथ्यात्व में आकर एक अंतर्मूर्त रहकर फिर मरेगा, उसी गुणस्थान को प्राप्त होकर अन्य वेदों में, चाहिए अन्य जीवों में नहीं अन्य वेदों में, पेंसिल से करना किसी की पुस्तक है तो, अन्य वेदों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अंतर्मूर्तों से कम स्त्रीवेद की स्थिति सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है, यानी स्त्री वेदी सम्यक मिथ्या दृष्टि का। अब 97 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। असंजत सम्मादिट्ठी पहुड़ी जाव अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्छन अथी अंतरम निरंतरम। अ के ऊपर बिंदी देना, अंतरम करना। असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती स्त्री वेदियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यानी इन्हीं सभी गुणस्थानों में हमेशा स्त्रीवेदी जीव भी पाए जाएंगे। पुरुषवेदी तो हो गए, ये स्त्रीवेदी ने भाव से स्त्रीवेदी लेना है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतोमुहूर्तम। उक्त गुणस्थान वाले स्त्री वेदियों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अन्य गुणस्थान को जाकर और लौटकर उसी गुणस्थान को आए हुए जीवों का अंतर्मुहूर्त अंतर पाया जाता है। तो ओग से यहाँ क्या डिफरेंस होगा?
प्रश्न क्या है?
मेरा प्रश्न है, ओग में जो हमने गुणस्थानों का अंतर देखा था, चौथा वाला है वो नीचे का या ऊपर के गुणस्थान में आ जाकर आता है उसका अंतर्मुहूर्त होता है। पांचवें वाला का वही है, छठे वाला है वो सातवें में जाके आएगा लौटकर उसका अंतर्मुहूर्त होता है। सातवें वाले का ऊपर भेजा था। हाँ, अब यहाँ क्या करेंगे? ऊपर जाएगा तो अपगत वेदी होगा, वेद से अवैध हो जाएगा, तो उसको नहीं ले।
नौवे में होगा या अभी तो सातवें में है।
अपन सातवें का अंतर हमने ओग में कैसे घटित किया था? उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा था, उसका काल इन्हें कम था। अभी यहाँ इसको छठे में भेज कर लाना पड़ेगा, तभी उसका अंतर होगा। ओग से ये डिफरेंस होगा, सातवें के अंतर के लिए छठे में जाके वापस आया। यानी सातवें गुणस्थान का अंतर छठे का काल, यानी ओग में उसको उपशम श्रेणी में भेजा था। देखो देखो, उक्त गुणस्थान वाले स्त्रियों ने एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, ये तो बता दिया उन्होंने, पढ़ा मैंने, परंतु उसमें सातवें की बात उन्होंने बताई नहीं है। पर हम सोच सकते हैं ना, ओग में हमने अलग से दिखा था, जहाँ वेद की अपेक्षा नहीं थे तो वही भी वहां पर भी ऐसी बात बताई थी। उपकसेन पलिदौम सदपुधत्तम। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पल्योपम शत पृथक्व है, यानी उस गुणस्थान से नीचे आए मिथ्यात्व में लगातार स्त्रीवेद में रहे और लास्ट भव में फिर उन्होंने उस गुणस्थान को प्राप्त किया। उसको बताते, इनमें से पहले स्त्रीवेदी असंयत समय दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह के 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव देवियों में उत्पन्न हुआ। अब यहाँ स्त्रीवेद में लंबे काल तक रखना है तो अन्य वेद में भी लंबे काल तक रहकर आया हुआ जीव लेना। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो। देखो, पहले देवी में इसे उत्पन्न कराया है, लंबा काल लेना, क्योंकि यहाँ जल्दी से जल्दी अंतर्मुहूर्त में समय तो प्राप्त करेगा। अगर मनुष्य 3 इंच में लेते तो लंबा गर्भ का काल भी लेना पड़ता। समूर्छन को तो ले नहीं सकते क्योंकि वो नपुसक वेदी है, इसलिए देवी को ले लिया। स्त्री वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ यानी चौथे में आया। प्रथम उपशम सम्यक्त के काल में छह आवली अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को जाकर मरा और अन्य वेद को प्राप्त हो गया। पुरुष वेदी या न पुरुष वेदी हुआ ऐसा हम कहेंगे ना, जो कुछ है। मैंने सासादन गुणस्थान में एक समय बिताया और मरकर अन्य वेद में चला गया। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम पल्योपम शतपृथक्त्व प्रमाण अंतर होता है। शंका, कौन सा? छठे में जाकर वापस आएगा, क्योंकि अप्रमत्त पांचवे में नहीं जाता डायरेक्ट। अप्रमत्त नीचे कहीं नहीं जाएगा डायरेक्ट, छठे में होकर ही जाता है। शंकाकार पूछता है, सूत्र में देशोन वचन क्यों नहीं कहा, कुछ कम क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि पृथक्त्व इस पद के निर्देश से ही उस देशोनता का ज्ञान हो जाता है। पृथक्त्व कहने से उसमें उसको इंक्लूड हो गया, पृथक्त्व सौ पल्ले बताया उसी के अंदर आ गया वो। अब स्त्रीवेदी संहिता संयत जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला, अब यहाँ देवी को लेना कि नहीं लेना? पांचवा गुण स्थान है ना, अभी उसको देवी को नहीं ले सकते। कोई एक अन्य वेदी जीव स्त्री वेदियों में उत्पन्न हुआ, अब उसको तिर्यंचिनी में पहले ले लेना, क्योंकि वहां गर्भकाल भी छोटा ले सकते। दो मास गर्भ में रहकर निकला और दिवस पृथक्त्व से विशुद्ध हो, यहाँ दो मास लिए, वहां तीन पक्ष लिए थे और दिवस पृथक्त्व ने तीन दिन लिए थे, यहाँ दो मास और तीन दिन लिए। वेदक सम्यक और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में प्रथम ऑप्शन सम्यक और देश संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, पुनः सासादन गुणस्थान को जाकर मरा और देव हो गया। अभी पांचवें में मरा तो देव ही होगा, ये नियम है, क्योंकि पहले आयु बांधी है तो बद्धा इसका है, तो देवायु बांधी है तभी पांचवा में जा सकता है, अन्य आयु के साथ नहीं जा सकता, इसे देव में। इस प्रकार दो मुहूर्त और दिवस पृथक्त्व से अधिक दो मास से कम स्त्रीवेद की स्थिति स्त्रीवेदी संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। हमने तीन पक्ष किसमें लिया था? संगी पंचेंद्रिय में लिया था, और स्त्रीवेदी में तो दो मास लिया, दो मास प्लस तीन दिन प्लस अंतर्मुख। यहाँ वेदक समय तो वहां प्रथम उपशम की बात थी, पहले हमने जो बात की थी 73 और 84 पेज पर प्रथम उपशम सम्यक्त की बात थी, वहां पर 84 पर था, समाधान में उत्पन्न होने के पश्चात तीन पक्ष तीन दिवस और अंतर्मूर्त प्रथम ऑप्शन समय को धारण किया था त्रसों में, 84 पेज पर देखा, 73 पेज पर भी देखा था। हाँ, और वहां पर भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में हुआ, तीन पक्ष तीन दिवस और अंतर्मूर्तियां, और यहाँ दो महीने, क्या स्त्रीवेदी, पर स्त्रीवेदी हुआ तो क्या हुआ, गर्भ में थोड़ा ही ज्यादा जाएगा। ये क्या डिफरेंस है वो लिख के रखेंगे और यहाँ उसने वेद सम्यक तो प्राप्त किया। यानी वहां प्रथम उपशम बीच संहिता संयत किया था, यहाँ वेदक बीच संहिता संयत किया। चलो आगे बढ़ के जो डिफरेंस है वो हमने नोट किया बस, आगे कहीं उसका आता है, क्योंकि अभी तक तो हमने दो मास ऐसा ही दिया था। ये तीन पक्ष वाली बात वहीं पड़ी थी दो जगह। ये हो गया, नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे। स्त्रीवेदी, हाँ ऐसा लगा प्रथम उपशम के लिए तो अधिक समय लगेगा, पर यहाँ तो उल्टा चला, उल्टा हो गया। श्रीवेदी प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला को ये एक अन्य वेदी जीव स्त्रीवेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। अभी मनुष्यों में उत्पन्न कराना है, मुनि बनाना है, तो गर्भ को आदि लेकर 8 वर्ष का हो वेदक सम्यक और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, पुनः प्रमत्त संयत हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो त्रिवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में प्रमत्त संयत हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, अंत में उसको प्रथम उपशम सहित वो प्राप्त हुआ, पश्चात मरा और देह हुआ। वो देह होने का कारण भी देखा, क्योंकि पहले आयु बंद किया है एक बात और देवायु बांधी है तो अभी सातवां गुणस्थान हो सकता है, अन्य आयु के साथ नहीं हो सकता था, इसलिए देव में गया, पुरुष वेदी हो गया, क्योंकि स्त्री वेद का काल उसका पूर्ण हुआ है। लंबे काल अप्रमत्त में आए बिना प्रमत्त में जा नहीं सकते। नहीं देखो देखो कहाँ से पहली बात बता रहे, वेदक सम्यक तो अप्रमत्त यानी सातवां गुणस्थान, फिर प्रमत्त में आया, छठे में आया, छठे में से मिथ्यात्व में गया, सातवें में से नहीं जा सकता। आपका क्या प्रश्न है अभी? वो तो सातवें में ही जाता है, पहले सातवें में ही जाता है, पहले से जाएगा तो सातवें में ही जाता है, कोई भी जीव नियम है, सातवें में से छठे में आएगा, तो अभी छठे कैसे होगा? और यहाँ छठे का ही अंतर देख रहे हैं, सातवें हाँ तो सातवें में जब भेजेंगे तो कैसा अंतर होगा? कहाँ भेजा? नहीं भेजा, पहले अप्रमत्त में गया, फिर प्रमत्त में अभी आया, जब प्रमत्त का काल पूरा करके नीचे जाएगा तब अंतर चालू हो जाएगा।
सातवें में से डायरेक्ट मिथ्यात्व में नहीं जाता है, नहीं जाता है,
और छठे में प्राप्त किए बिना भेजेंगे कहीं पर भी तो छठे का अंतर कैसे होगा? छठे में तो आना ही है उसको, और सातवां छठा हजारों बार होगा, हजारों बार के बाद जब छठे में आकर नीचे जाएगा तब अंतर चालू हो गया, उसके लिए एक अंतर्मूर्त गिना। इस प्रकार 8 वर्ष और 3 अंतर्मूर्तों से कम स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर लब्ध हुआ। इसी प्रकार से स्त्रीवेदी अप्रमत्त संयत का भी उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। यानी वैसा ही लेना, 28 की प्रकृति वाला है, अन्य वेद में से स्त्रीवेद में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष गर्भ से 8 वर्ष के बाद उसने अंतर्मुहूर्त में वेदक सम्यक और अप्रमत्त गुण स्थान प्राप्त किया, फिर अप्रमत्त प्रमत्त हजारों बार करेगा, और जब लास्ट में अप्रमत्त से प्रमत्त में होकर फिर मिथ्यात्व में जाएगा, तब उसको अंतर गिनेंगे, वहां सब मिलकर अंतर्मूर्त कहेंगे। ऐसे ही है, आगे बढ़ते हैं 99 पेज। दौनम उवसाम गाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच जहन्न उपकसम ओघम। स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशामकों का आशा बेन आपको बताना है, दो ही उपशामक क्यों लिए, 8वां 9वां ही लिया, 10 11 क्यों नहीं लिया, हमेशा 4 उपशामकों का अंतर कहते हैं ना, यहाँ 2 ही उपशामकों का अंतर पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? मनीषा बेन आप कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते है? हाँ, बाद में वो अपगत वेदी होते हैं। स्त्रीवेद कहाँ तक है? 9वें तक
स्त्रीवेदी रहती नहीं।
हाँ, रहते नहीं, तो स्त्रीवेद जहाँ तक है तभी तक उनको कहेंगे, ख्याल में आएगा बात? तो अभी पढ़ने के पहले आप बताओ, 8वें गुणस्थान वाला है कोई स्त्रीवेदी, तो उसका अंतर कितना होगा एक जीव की अपेक्षा? नाना जीव की अपेक्षा नहीं पूछ रहे हैं। मरेगा तो पुरुष वेद में जाएगा, अंतर यानी वापस उसमें आना चाहिए। नहीं बोलो, वो वहां से ऐसा ऐसा कर रहे अभी अभी से अपगत वेदी होता है। अभी कब से शुरू करना? एक कोई उतरने वाला लेना, उपशम श्रेणी वाला, उतरते हुए 8वें में आया, अब उसे 8वें में से 7वें में आया, फिर 6ठे में आया, उसका तो श्रीवेदी रहा, फिर अंतर्मूर्त के बाद फिर उपशम श्रेणी चढ़ी, तो फिर दोबारा चढ़ने वाला 8वां होगा। नहीं समझे? उतरने वाले 8वें से चढ़ने वाले अंतर 8वें तक का अंतर गिनो, वैसा हो सकता है। चढ़ते वाले का अंतर नहीं होगा, वो बीच में अपगत वेदी होगा। हाँ, अपने कहा अंतर्मूर्त बराबर है, वो उतरने वाला न, वही तो घटाना, ऐसा ही घटना ना, उतरा और फिर उपशम श्रेणी चढ़ी। चढ़ता है ना, उतरते हुए हमने गिना उसको, पहली बार चढ़ के उतरा उसकी, यानी उतरते हुए 8वें में आया, स्त्रीवेद है 8वां गुणस्थान, दोबारा चढ़ा तो स्त्रीवेद है 8वां गुणस्थान है, अंतर्घटित हुआ। अब उत्कृष्ट अंतर्घटित करो स्त्रीवेदी में,
स्त्रीवेदी
रहना चाहिए। तो कैसे घटित करेंगे? 8वें का अंतर, उत्कृष्ट अंतर 8वें का, एक ही भाव लेना पड़ेगा, एज इट इज कैसे करेंगे ना? ना 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 ऐसे, हाँ ठीक ठीक है, मिथ्यात्व में भी अबद्धायुष्क वाला उतरता हुआ लेना, पहला पहले भाव में उतरते हुए 8वां हुआ, फिर मिथ्यात्व में गया, श्रीवेद में रहा, फिर चढ़ते हुए 8वां प्राप्त हुआ लास्ट भाव में,
उसको पल्लव शतक पल्लव
चढ़ता नहीं लेना, उतरता लेना, शतपृथक्त्व, पल्ले शतपृथक्त्व। और बाद में आठवें में भेजा, और आठवें में ही उसको अंतर्मूर्ति के बाद मर के पुरुष वेदी देव हुआ। अभी यहाँ क्या कहना है मालूम नहीं है, अभी यहाँ पढ़ेंगे। पहले हम तो सोचेंगे, हाँ देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे। त्रिवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है, यानी जघन्य एक समय, उत्कृष्ट वर्ष पृथक लिखा है नीचे, क्योंकि जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है, इनकी अपेक्षा ओघ से इनमें कोई भेद नहीं है। एक जीवन पड़ुच्छ जघन्य न अंतोमूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यह सूत्र सुगम है, ये सुगम नहीं, वो अंतर्मूर्त कैसा, वो तो घटित करना चाहिए। उतरने वाले आठवें से चढ़ने वाले आठवें तक का अंतर लेना चाहिए, हमेशा जो ऊपर से हम घटित करते वो नहीं होगा। अने उपशम श्रेणी उतरते हुए आठवें से सातवें में आया, दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ी, तब अंतर हुआ। उक्कसेन पलिदौम सदपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम शतपृथक्त्व है। जैसे मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव स्त्रीवेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, पश्चात अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन कर, क्योंकि द्वितीयोपशम कराना है ना, इसलिए दर्शन मुनि का उपशम कर, अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय होकर पुनः परिनिवृत्त हो, सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण हो। अब उसके बाद नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, वो तो नियम से सातवें में आएगा, सातवें वाला छठे में आएगा। और स्त्री वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, यानी वो नीचे आकर फिर मिथ्यात्व में भी चला गया, तभी तो स्त्रीवेद में उत्पन्न होगा। अंत में संयम को प्राप्त हो, कृतकृत्य वेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। ये कृतकृत्य वेदक ने क्षय क्यों बनाया? इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ।
कृतकृत्य बनाने की क्या आवश्यकता है?
पीछे निद्रा प्रचला के बंध विच्छेद हो जाने पर मरा और देह हो गया, क्योंकि उसको बाद में कम टाइम रखना था इसलिए जल्दी मरा, शपश्रेणी में वो नहीं हो सकता था। इस प्रकार 8 वर्ष और 13 अंतर्मूर्तों से शपक करने के लिए, यानी अच्छा 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 कृतकृत्य वेदक शब्द क्यों डाला फिर? हम्म, ऊपर इथिवेदच्छिदि भमीय अवसाने संजनम परिवज्य कदकरणिज्जो होदुन। कदकरणिज्जो का अर्थ क्या है? कृतकृत्य होकर वो सामगो जादो ये कृतकृत्य वेदक अन्यत्र कहीं शब्द आया क्या? इसको कदकरणिज्जो शब्द आता है? कब कब आया था कृतकृत्य वेदक शब्द? कब आया था? ये तिर्यंच समय दृष्टि होगा तो ही कृतकृत्य वेदक में उत्पन्न होगा। कदकरण जो है ना, वहां जो अपूर्वकरण के लिए जो कुछ कार्य आवश्यक है वो हो। कदकरणिज्जो करण करके, ये जो श्रेणी चढ़ने के पहले कभी आया है शब्द करण परिणाम करके? श्रेणी का अंतर अन्यत्र कहाँ है वो देख लो जरा। चार उपशामकों का पुरुष वेदियों में देख लो जरा आगे। वहां पर कदकरण जो हो दू ना, वहां पर भी कृतकृत्य वेदक होता हुआ समय। कृतकृत्य वेदक होने की जरूरत क्या है उसको वहां पर? करण परिणाम करके लिखते तो ठीक था ना। अभी अपना पेज है 99 पर।
क्या हो गया?
105 पर वो कृतकर्णज्य मिला मुझे, परंतु कृतकृत्य वेदक होकर कोई ऊपर चढ़ता ही नहीं है, पूरा क्षायिक होकर ही चढ़ सकता है। यानी कृतकृत्य वेदक लिखने की क्या जरूरत थी? कदकरणी जो है ना, करण परिणाम करके, ऐसा अर्थ ज्यादा संयुक्तिक लगता है। थोड़ा इस पर हम कृतकृत्य वेदक के लिए प्रश्न चिन्ह लिखते हैं और आगे कहीं उसका उत्तर आएगा तो देखेंगे। कदकरणी जो का अर्थ लिखना है हमको। कौन से डिक्शनरी? डिक्शनरी है ही नहीं वो, ये प्राकृत शब्द है ना। कदकरण जो कृतकरण किया है उसने, 105 नंबर पर यही पेज कृतकरण जो एक शब्द आया है कदकरण जो यानी क्वेश्चन मार्क लिख के रखेंगे 99 पेज के लिए और 105 के लिए। उन्होंने ऐसा कृतकृत्य वेदक किया है और करण करके ऐसा हम अर्थ ले रहे हैं। हाँ, करण करके नहीं, सातवें में ही करण करता है, अपूर्व करण होता है ऐसा उसका अर्थ है। कृतकरण जो हो दूना है वो करण शुरुआत करके सातवें में अपूर्व अधकरण होता है और बाद में वो अपूर्वकरण होता है। वेदक समय दृष्टि होगा तो भी वेदक से उसको क्षायिक होकर ही चढ़ना पड़ेगा, तो वेदक लिखने का कोई प्रयोजन ही नहीं था, क्षायिक लिखते डायरेक्ट। पूरा क्षय बिना किए बिना तो श्रेणी चढ़ेंगे नहीं। हाँ, उसके लिए ये सब उसके अंदर आ गया। हाँ, यानी उसके लिए जो आवश्यक जो बात है या तो क्षायिक करके चढ़ेगा या फिर, क्योंकि जब चढ़ता है तभी से अंतर हम हाँ त्रिवेद की स्थिति बनो। नहीं, जरूरत नहीं वहां पर, क्योंकि उसके आठवें में पहुंचाना है। उसने वेदक समय दृष्टि होकर बाद में भी जा सकता है। क्योंकि आठवें का अंतर हम जब गिनेंगे जब वो आठवें में पहुंचेगा। अब चलो, ये प्रश्न हमने रखा है मन में, आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 100 पर आ गए। जाने पर मरा और देह हो गया, यानी निद्रा प्रचला के बंद विच्छित्ति के बाद अंतर मुहूर्त में चढ़ते समय मरकर देह हुआ, क्योंकि आठवें से आठवें तक का अंतर गिनना था। इस प्रकार 8 वर्ष और 13 अंतर मुहूर्तों से तथा अपूर्वकरण काल के सातवें भाग से हीन, सातवां भाग है उसका पहला भाग जो अंतर्मूल प्रमाण है, अपनी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर। हाँ, मरण नहीं है वो भाग, उसने श्रीवेद में बिताया। अनिवृत्तिकरण उपशामक का भी इसी प्रकार अंतर होता है। विशेष बात यह है कि उनके 13 अंतर्मूर्तों के स्थान पर 12 अंतर्मूर्त और एक समय कम कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आठवें का अंतर्मूर्त बताया पूरा, वहाँ 8 के बाद 9वें में गया और एक समय में मरा, ऐसा लेना है। वही तो मैं देखती हूँ। नहीं, अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण में आते ही अंतर शुरू हो गया, इसलिए वहां का एक अंतर्मूर्त कम हो गया। और यहाँ का आठवें का अंतर्मूर्त रखा ही है उन्होंने, परंतु वहां भले कम हुआ मगर यहाँ बढ़ेगा ना आठवें का पूरा अंतर्मूर्त। आठवें का अंतर्मूर्त और एक समय ऐसा लेना है। वो इसके वो जो आठवें कांतर मुहूर्त वो स्त्रीवेद के उसमें ही ले लिया उन्होंने, स्त्रीवेद के काल में। बाद में उसको कम नहीं करना है, बाद में जो बचेगा उसको कम करना था, बाद में एक समय ही लेना है फिर से। शुरुआत में वो सब बाकी कंडीशन वही रखना है। 9वें से 8वें में आता ही अंतर चालू हो गया। यहाँ 99 पेज पर 13 अंतर मुहूर्त गिने थे, उसके बदले 12 ही अंतर मुहूर्त गिनने। 8वें में आते ही अंतर चालू हो गया, फिर आगे की कंडीशन सब वही रखना। लास्ट में जब वो श्रेणी चढ़ेगा, जब 9वां प्राप्त हो गया तो अंतर समाप्त हुआ। 9वें प्राप्त होने पर एक समय में मरारदे हुआ। वहाँ अंतर मुहूर्त वहाँ पर रहा था, इसलिए उसने 8वें का पहला भाग लिया। 190 दौनम खवाणम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने न एक समयम। स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन दोनों क्षपकों का भी बता रहे अंतर कितने काल तक होता है। नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर होता है। यह सूत्र सुगम है। उपकस से न वास पुदत्तम, ओघ में कितना कहा था शपक श्रेणी का अंतर 6 मास, और यहाँ क्या लिखे क्यों स्त्रीवेद से ही चढ़ने वाला जीव लेना। हाँ पुरुष वेदी ज्यादा हो गए ना, पुरुष वेदी चढ़ने वाले जीव, यानी अगर वेद की कोई अपेक्षा नहीं है तो 6 महीने में कोई ना कोई चढ़ेगा। अब एक वेद की अपेक्षा लगाई तो वर्ष पृथक को कह देते। मेरे ख्याल में पुरुष वेदी में 1 साल है, पुरुष वेदी में शायद एक वर्ष का होगा। नहीं शादी के 1 वर्ष, पेज नंबर 106 पर अकेले पुरुष वेद के साथ चढ़ने वाले, यानी बीच में कोई स्त्री वेदी नपुंसक वेदी चढ़ गए तो पुरुष वेदी में मैक्सिमम अंतर 1 साल का होता है। मुझे याद था ऐसा कुछ। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना उसका नीचे 191 का अर्थ, स्त्री वेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, क्योंकि अप्रशस्त स्त्री वेदियों का वर्ष पृथक्त्व के अतिरिक्त अन्य अंतर नहीं पाया जाता। थोड़ा अप्रशस्त है ना उसमें, जैसे वो हमने देखा था आर अक्षर नहीं करते ये नहीं करते, तो उसमें क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले भी कम हो गए, ये बात कहना चाहते मैंने। उसमें भी अधिक पुरुषार्थ करने वाले जो कम है ऐसा लगना उसमें। हाँ आपको संख्या याद है। हाँ वो स्त्रीवेद के साथ क्षपक कितने हैं, उपशामक कितने हैं, पुरुषवेद के साथ वो बता रहे हैं। हाँ पुरुषवेदी में कितने देखे थे हम 40 40, उनमें भी डबल। हाँ 40 और 80। हाँ और स्त्रीवेदी में 10 और 20। सात और 14 थे कि 5 और 10 थे, 5 और 10 थे। ये हमने वो तीसरी पुस्तक में पढ़ी थी ना संख्या, वही बता रहे ना। देखो हमने ये पढ़ा वर्ष पृथक अंतर है, क्योंकि वो भी पढ़ा। अब 192 एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, जैसे हमने क्षपक श्रेणी में एक जीव की अपेक्षा अंतर ही नहीं होता है, ये तो बात सही है। एक जीव की अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवों का अंतर नहीं है, निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। अब स्त्री वेदी की मार्गणा हो गई, अब पुरुष वेदी की बात करेंगे। तो कोई जीव लगातार पुरुष वेद में रहेगा तो कितने काल तक रह सकता है? ऊपर हमने क्यों देखा पल्य शतपृथक, अभी सागर शतपृथक, पृथक तो सौ सागर। पुरुष वेदेषु मिथ्या दृष्टि ओघम, पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है, यानी नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं होगा, एक जीव की अपेक्षा एक अंतर्मूल दूसरा गुणस्थान करके वापस आएगा है? देखो, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से, क्योंकि पुरुष वेद के साथ मिथ्या को पर्याय में हमेशा जीव होंगे, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूल, क्योंकि चौथे में गया वापस आया या तीसरे में जाके वापस आया, वो अंतर्मूल। उत्कृष्ट कुछ कम दो छासर सागरोपम अंतर की अपेक्षा, ओघ में भी ऐसा ही देखा था क्योंकि लगातार समय दृष्टि रहा दो छासर सागर, और लगातार समय दृष्टि रखना है तो पुरुष वेद में ही रहेगा, स्त्री वेद में यह संभव नहीं था। ख्याल में आई ना बात? तो स्त्री वेद में हमने मिथ्यात्व के अंतर में क्या लिया था याद है? वो 55 पल्ले वाली देवी का भाव लिया। अब यहाँ पुरुष वेद में है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लगातार पुरुष वेद में भी रखो और लगातार समय दृष्टि रखो तो 66 सागर, फिर एक अंतर्मूर्त मिथ्या समय मिथ्यात्व में, फिर 66 सागर में एक अंतर्मूर्त कम, फिर वो मिथ्यात्व में आ जाता। इसलिए कुछ आता है ना लगातार रहा उसमें वो मुनि भी हुआ, क्योंकि इतना लंबा काल उसको केवल चौथे पांचवे में इतना लंबा काल नहीं बिता सकता, वो भी हमने देखा था। तो बीच में मुनिराज भी हुए वो, फिर भी मिथ्यात्व में चले। तो कुछ कम दो छासर सागरोपम अंतर की अपेक्षा ओघ मिथ्या दृष्टि के अंतर से पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टियों के अंतर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उसको पुरुष वेद में रखना सम्यक्त के साथ तो संभव है, ये जरूरी नहीं कि उसको पुरुष वेद में रहने के लिए सम्यक दृष्टि होना चाहिए। मिथ्यात्व अवस्था में लगातार पुरुष वेद में रहने का काल भी हमने देखा, सौ सागर पृथक। ये जब स्त्री वेदी की बात आई ना, इतने काल के बाद वो स्त्री वेदी अन्य वेद में चला ही जाएगा। तो जब अपने शिविर हुए था देवलाली में, तो कुछ आश्रम की महिलाएं वगैरह आई, वो बोलने लगी हमने तो ऐसा लगा कि स्त्री वेद का कभी छेद ही नहीं होता सम्यक्त हुए बिना। मैंने ऐसा नहीं है, स्त्री वेद नपुंसक वेद पुरुष वेद कुछ भी वेद हो सकता है, स्त्री वेद से पुरुष वेद में जन्म लेने के लिए कोई सम्यक दृष्टि होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्त्रीलिंग छेद उसका अर्थ है अभी वो स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा जब तक समय दृष्टि है, तो उसका अर्थ है उसके छेदने के लिए समय दृष्टि होना चाहिए, नहीं तो लगातार स्त्री वाली स्त्री ही रहेगी, ऐसा आम समझ है लोगों का। अब शासन सम्मा दिट्ठि, सम्मा मिच्छा दिट्ठि न मंतरम केवचिरम काला दोहो दी नाना जीवम पड़ुच्च जहने न एक समयम। पुरुष वेदी शासन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, जैसे हमने अन्य गतियों में अन्य मार्गणाओं में देखा वैसे यहाँ पर लेना। यह सूत्र सुगम है, यानी कोई शासन में थे जीव वो अन्य नीचे मिथ्यात्व में चले गए, एक समय कोई नहीं शासन में, फिर बाद में कोई अन्य जीव आ गए, इस तरह से नाना जीवों की बात है। उपकस से उपकसेना पलिदोमस असंख्य यदि भागो, हाँ पल्ले का असंख्य उक्त जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा बात है। उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग है। अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे, एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न पलिदोमस असंख्य यदि भागो अंतोमोत्तम, ये सबके लिए ऐसा ही है, जघन्य अंतर तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग। पुरुष वेदी शासन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लवपम का असंज्ञा अथवा भाग या अंत एक कॉमा लगा ले, क्योंकि ये छासादन के लिए और अंतर्मूर्त है ये तीसरे गुणस्थान के लिए। यह सूत्र भी सुबोध है, बहुत बार इसकी चर्चा हुई थी अपनी। उक्कसेन सागरवम सदपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शतपृथक्त्व है। जैसे अन्य वेद वाला एक उपशम सम्य दृष्टि जीव, भले वो नपुसक वेदी हो या स्त्री वेदी हो, सासादन गुणस्थान में जाकर सासादन गुणस्थान के काल में एक समय अवशिष्ट रहने पर पुरुषवेदी हो गया, यानी वो पुरुषवेदी हो गया ने पुरुषवेद में जाकर जन्म लिया, नहीं तो वह एक भव में कोई वेद नहीं पलटता। समझ में ही बात? हाँ, यानी पुरुषवेद में उत्पन्न हुआ। अभी अंतर शुरू नहीं हुआ, अभी पुरुषवेद में जन्म लिया उसने, पुरुषवेद में जन्म लिया और एक समय के लिए सासादन में रहा, मिथ्यात्व में चला गया, पुरुषवेदी तो रहा वो। ये पुरुषवेदी हो गया इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वो स्त्रीवेद से पुरुषवेद में टर्न हो गया, एक भाव में वेद कभी नहीं चेंज होगा। हाँ, समझ में आई बात? ये नक्की है। हाँ, उसके बारे में बहुत भ्रांतियां चलती है सब जगह। और सांसादन गुणस्थान के साथ एक समय दृष्टि गोचर हो गया, पुरुषवेदी हो गया ना, उत्पन्न हो गया, अन्य भव में गया, मरकर अन्य भव में चला गया पुरुषवेद, कभी नहीं होता चेंज। चेंज ऐसा कोई नहीं होता, पहले स्त्री वेद थे, वो जो कोई वेद था वो वेद ही है, बाहर से भाव ही वेद करना है, बाहर से कुछ भी चेंज करो आप उसमें क्या है, फर्क नहीं है, पहले से वही वेद रहता है। और द्रव्य वेद भी चेंज नहीं होता, आप अपने ऑपरेशन से कुछ भी कर दो, कुछ हॉर्मोन्स देके कुछ भी करो, उसकी बात नहीं है वो। तो सासादन के साथ एक समय रहा, द्वितीय समय में मिथ्या तो जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, पुरुष वेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अभी लगातार पुरुष वेद में रहा, आयु के अंत में यानी अंतिम आयु में अंत में जाके उपशम सम्यक को ग्रहण कर सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, पश्चात द्वितीय समय में मरा और देवियों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उक्त जीवों का दो समय कम सागरोपम शतपृथक्त्व अंतर होता है। यहाँ दूसरे समय में मरकर स्त्री में उत्पन्न हो सकता है, ऐसा लिया, अभी तो समय दृष्टि था इसलिए उसको ले लिया। तो फिर उसका पुरुष वेद बढ़ जाएगा, अगर अगर देव में उत्पन्न कराते तो देव यानी पुरुष, तो पुरुष वेदी की उत्कृष्ट स्थिति नहीं पाई ना उसने, पहले वो सासादन में चला गया, उसका क्या अर्थ है? देवी में इसलिए कहा कि सासादन में एक समय में मरने वाला देवगति में जाता है इसलिए, पर देवगति में उसको स्त्री वेद के साथ भेज, क्योंकि मनुष्य नहीं करना है तो और आवली का संख्या तो भाग और बिताना पड़ता है उसे। ख्याल में आई ना बात? उन्हें शुरुआत में एक समय में मरने वाले देव पर्याय में जला गया, पर देव पर्याय में स्त्री होगा, पुरुष का भी उसके पुरुष की स्थिति पूरी हो गई, देव में भेजेंगे तो और कितने समय बढ़ेगा उसका। हाँ, अब पुरुष वेदी सम्य मिथ्यादृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि देवों में जल्दी से जल्दी तीसरे में जा सकता है। जो पर्याप्त उनसे पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक मिथ्यात्व को जाकर वहां से मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हो, अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। प्राप्त होते ही अंतर समाप्त हुआ, अपन बाद में कितने गिनने हैं, तो पूरा सम्यक मिथ्यात्व का एक अंतर मोड वो पांचवा हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। तत्पश्चात अन्य गुणस्थान को जाकर चौथे में जाएगा या पहले में जाएगा, अन्य वेद में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अभी अन्य ने चौथे में नहीं भेज सकते, चौथे के साथ मरेगा तो पुरुष वेद में उत्पन्न होगा, पहले में जाना पड़ेगा। अन्य वेद में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अंतर्मूर्तों से कम सागरोपम शत पृथक्त्व पुरुष वेदी समय मिथ्या दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर होता है। असंजत सम्मादिट्ठि पहुड़ी जाव अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादोहोदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक पुरुषवेदी जीवों का अंतर कितना काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, तो हमेशा ही हमने देखे थे इसमें तो हमेशा जीव रहेंगे ही रहेंगे। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतो मोत्तम उक्त गुणस्थानवर्ती जीवों का एक जीव की अपेक्षा लगाना चाहिए, बीच में डालो एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, जीवों का के बाद एक जीव की अपेक्षा डालना शब्द सूत्र में है ना, एक जीवम पड़ुच्छ, इसलिए एक जीव की अपेक्षा लिखना अच्छा है। यह सूत्र भी सुगम है। अब आते हैं 103 पृष्ठ पर। उक्कस्येन सागरवम सदपुदत्तम असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती पुरुष वेदियों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शतपृथक्त्व है। अब असंयत समय दृष्टि पुरुष वेदी जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवों में उत्पन्न हुआ, वो अर्लीस्ट समय को प्राप्त करा ना उसको, ये नपुसक वेदी या स्त्री वेदी देव में आया। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक समय को प्राप्त हुआ, पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। प्राप्त होते ही अंतर तो समाप्त हुआ, बाद में उपशम सम्यक्त का अंतर्मुद गिनना पड़ेगा, तो वो अंतर्मुद कम करने के लिए उसको सासाधन में भेजेंगे। उपशम सम्यक्त के काल में छह अवलिया अवशेष रहने पर सासाधन को जाकर मरा और देवों में उत्पन्न हुआ। देवों में नहीं देवियों में, क्योंकि वो जल्दी मारना है ना उसको, छावली पहले वो सासाधन में गया और एक समय में ही मर गया। देवों में नहीं या देवियों में लेना, क्योंकि पुरुष वेदी से स्त्री वेदी बनाना है। इस प्रकार पांच अंतर्मूर्तों से कम सागरोपम शत पृथक्त्व पुरुष वेदी असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर होता है। अब संहिता संयुक्त पुरुष वेदी जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। कोई एक अन्य वेदी जीव अभी इसको देव में तो नहीं उत्पन्न करा सकते है ना, पुरुष वेदियों में उत्पन्न हुआ, अब तिर्यंच में उत्पन्न कराया, 2 मास गर्भ में रहकर निकलता हुआ दिवस पृथक्त्व से उपशम समय कर सहिमा सेम को एक साथ प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी 2 मास लिए, हाँ 3 दिन तो ऐड करना है, पर वहाँ 3 पक्ष जो लिए थे, दो मास प्लस 3 दिन प्लस अंतर्मूल, और इसको भी वेदक उपशम समय को लिया। यहाँ पर यानी श्रीवेदी में 2 मास वगैरह वगैरह वेदक समय को प्राप्त किया था, अब इसको 2 मास वगैरह करके उपशम समय को प्राप्त कराया। हाँ वही तो देखो, और जब उपशम सम्यक्त के काल में 6 अवलिय रही तब सासादन उन्नस्थान को प्राप्त हो मिथ्यात्व को जाकर पुरुषवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और कृतकृत्य वेदक होकर संयमा सेम को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पश्चात अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त हुआ, इनमें ऊपर के गुणस्थानों संबंधी 6 अंतर्मूर्त और मिलाए, इस प्रकार 2 मास 3 दिन और 11 अंतर्मूर्तों से कम पुरुष वेद की स्थिति ही पुरुषवेदी संहिता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। कद करणी जो हो दूण यहां, इसके लिए तो उसको पहले 14 गुणस्थान में भेजकर शायक करके 5वें से 7वें में भेजना पड़ता, तभी बाद में अंतर कम हो जाता। देखो आगे क्या पढ़ते, शंका अंतर प्राप्त हो जाने पर पुनः मिथ्यात्व को ले जाकर अन्य वेदियों में उत्पन्न नहीं कराए, इसका क्या कारण है? यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिस काल से मिथ्यात्व को जाकर और आयु को बांध कर अन्य वेदियों में उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होने वाले काल से संख्यात गुणा है, इस अपेक्षा से उसे मिथ्यात्व में ले जाकर पुनः अन्य वेदियों में उत्पन्न नहीं कराया। ऊपर के गुणस्थानों में भी यही कारण कहना चाहिए, देखो हमने सामान्य से संहिता संयुक्त का अंतर जब देखा था या पंचेंद्रिय में, देखो जरा रसों में या मनुष्य पंचेंद्रियों में, पेज नंबर 84 निकालो, ये मिला 84 निकाला त्रसों में, समाधान वाली बात है ना। तो देखो पहला दूसरा अंतर्मूल, अपन सम्यक को ग्रहण करके क्षय किया, यहाँ पर भी वैसे ही करना था। अंतर्मूर्त प्रमाण संसार के अवशिष्ट रहने पर संयमा सेम को प्राप्त हुआ, बाद में वो वगैरह वगैरह ऊपर के गुणस्थान, यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए था। उन्होंने डायरेक्ट संयमासयम बनाया। कृतकृत्य वेदक होने के लिए भी सम्यक्त्व को प्राप्त करना पड़ेगा ना पहले। यानी वो ज्यादा संयुक्तिक रखता है, पहले सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, क्षायिक किया, फिर पांचवे में गया आयु के अंत में। आगे बढ़ते 104 पृष्ठ पर, समाधान का दूसरा पैराग्राफ। ऊपर के गुणस्थानों में भी यही कारण कहना चाहिए, यानी बाद में उनको ऊपर मोक्ष भेज देना। पुरुष वेदी प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतों का भी अंतर पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है, केवल इनमें जो विशेषता है उसे जानकर कहना चाहिए। क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्त उनकी तो उनकी स्थिति लेना, यहाँ पुरुष वेदी उनकी स्थिति लेना, ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। दोन्नम ओसाम गानम अंतरम केवचिरम काला दोहो दी नाना जीवम पड़ुच्च उगम। पुरुष वेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानों का अंतर ओघ के समान है, यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मोत्त है। ये भी उतरने से फिर चढ़ने वाला, तभी अंतर घटित होगा। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शतपृथक्त्व है। जैसे मोहकर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक अन्य वेदी जीव पुरुष वेदी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी का विसर्जन कर दर्शन मोने का उपशमन कर अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय पुनः लौट कर सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण फिर अपूर्वकरण, क्योंकि उतरते हुए को लेना है ना, बाद में उसको चढ़ाना लास्ट भाव में जाकर। 13 हुए होता हुआ नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ, सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण परिभ्रमण कर कृतकृत्य वेदक सम्यक भी होकर संयम को प्राप्त कर अपूर्वकरण संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। इसके ऊपर का कथन पंचेंद्रियों के समान है, और बाद में उसको मोक्ष भेज देना। क्षायिक बताना होता तो पहले तो चौथा पांचवा प्राप्त करके क्षायिक हुआ, बाद में वो चढ़ा, संयम प्राप्त करने के लिए उसको क्षय करने की क्या जरूरत थी? अपूर्वकरण प्राप्त होने के लिए उसको क्षय की जरूरत थी, और वो तो पहले ही करना है क्षय, संयमी होकर करे या चौथे पांचवे में करे, बात उसमें वो तो काल उसमें ही गिन रहे जो पुरुष वेद का काल है उसमें। अंतर कब घटित होगा? जब आठवें में पहुंचा, उसके पहले तो क्षय करना ही है। तो ये कदाकरण जो का ट्रांसलेशन मुझे बराबर नहीं हो रहा लग रहा। हाँ, इस प्रकार 8 वर्ष और 29 अंतर्मुहूर्तों से कम अपनी स्थिति प्रमाण पुरुष वेदी अपूर्वकरण उपशामक का उत्कृष्ट अंतर होता है। अनिवृत्तिकरण उपशामक का भी इसी प्रकार से अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि 8 वर्ष और 27 अंतर मुहूर्तों से कम सागरोपम शतपथत्व इनका उत्कृष्ट अंतर होता है। अभी क्षपक की बात करेंगे। दोन्नम खवानम अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्च जहनेन एक समयम। पुरुषवेदी अपूर्वकरण संयत और अनिवृत्तिकरण संयत इन दोनों में एक मात्रा 100 हो गई। क्षपकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। यह सूत्र सुगम है। उपकसेन वासम साधिरेयम। ओग में हम 6 महीना देखते थे, उक्त दोनों क्षपकों का उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष है। जैसे पुरुष वेद के द्वारा अपूर्वकरण क्षपक गुणस्थान को प्राप्त हुए सभी जीव ऊपर के गुणस्थानों को चले गए और अपूर्वकरण गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गए। पुनः 6 मास व्यतीत हो जाने पर सभी जीव स्त्रीवेद के द्वारा ही क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। पुनः 4 या 5 मास का अंतर करके नपुसक वेद के उदय से कुछ जीव क्षपक श्रेणी पर चढ़े। पुनः 1-2 मास अंतर कर कुछ जीव स्त्रीवेद के द्वारा क्षपक श्रेणी पर चढ़े। इस प्रकार संख्यात वार स्त्रीवेद और नपुसक वेद के उदय से ही क्षपक श्रेणी पर चढ़ा करके पीछे पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी चढ़ने पर साधिक वर्ष प्रमाण अंतर हो जाता है, क्योंकि निरंतर 6 मास का अंतर होना असंभव है। इसी प्रकार पुरुष वेदी अनिवृत्तिकरण क्षपक का भी अंतर कहना चाहिए। वो गैप गैप में स्त्रीवेदी नपुंसक वेदी हुए। कोई नहीं चढ़ा तो 6 महीने का अंतर करते। उन्होंने बीच में 3 महीने का 5 महीने का ऐसा ले लिया ना उसमें। हाँ, यानी 6 महीने का तो अंतर इतना ही हो सकता है। कोई ना कोई जीव तो चढ़ना ही है। हाँ, इसी प्रकार पुरुष वेदी अनिवृत्तिकरण क्षपक का भी अंतर कहना चाहिए। कितनी ही सूत्र पोथियों में पुरुष वेद का उत्कृष्ट अंतर 6 मास पाया जाता है, यानी कहीं कहीं 6 मास का अंतर भी बताया है। एक जीवम पड़ुच्च नत्थी अंतरम निरंतरम। दोनों क्षपकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि क्षपकों का पुनः लौटना असंभव है। अब यहीं रुकेंगे हम, नपुसक वेदी की बात कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से तुझे लो कालो सो सदा देत हो।